सन 7 जून 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का भी, दोनों में से जिस भी तरीके से आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते। दोनों लिंक चारों समय रोजाना एक रहे। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो आप दे सकते हो। आज की साकार मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा, कैसे मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे, पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने के लिए। बाबा पुजारी नहीं बनता, पुजारी नहीं बनता, वो हमेशा पूज्य रहे, चाहे तो उसकी पूजा करे या ना करे। सत्युग त्रेता में हम उसकी पूजा नहीं करते, वो फिर पूज्य कैसे हुआ? सत्युग में हम उनकी पूजा नहीं करते, वो पूज्य कैसा हुआ? भक्ति तो नहीं होती, पूज्य तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे आता ही नहीं, फिर उसको पूज्य कैसे कहेंगे? निशा है सत्युग क्रेता वाले नंबर एक जानते नहीं और दुखी नहीं होते, जानते नहीं, और वो उसको पूज्य कैसे कहेंगे? तो सत्युग क्रेता में, सत्युग क्रेता में तो पूज्य नहीं होगा। हम तो पूज्य अपने आप को तो हम पूज्य कहते तो नहीं है, वो तो हम अपने आप में पूज्य होते हैं। हम अपने आप में पूज्य कैसे होते हैं फिर सत्युग त्रेता में? कोई हमारी पूजा करता ही नहीं। हम श्रेष्ठ होते हैं, तो श्रेष्ठ का आपको फायदा होता है? श्रेष्ठ माना पवित्र, श्रेष्ठ माना निर्विकारी। श्रेष्ठ माना पवित्र ठीक है, निर्विकारी भी ठीक है, तो ये सोचो कि पूज्य कैसे होंगे? पूज्य का मतलब क्या होता है? पूज्य का मतलब क्या होता है? वो तो सत्युग त्रेता में होती नहीं, वापस सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, तो वहां पूज्य कैसे माने जाएंगे? पूज्य का मतलब क्या? पूज्य का मतलब होता है दूसरे के दिलों में आपके प्रति सम्मान, दूसरे के दिलों में आपके प्रति क्या हो? सम्मान। रियल पूज्य तो हम सत्युग में ही होते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है, हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। आज कोई भी एक दूसरे को सम्मान नहीं देता, पति पत्नी बच्चे कोई भी रिश्ता ले लो, सिर्फ मतलब के लिए ही है। जैसे ही मतलब खत्म हुआ कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते खत्म, सिर्फ मतलब तक जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। वो भी हम कहेंगे कर्म अकाउंट का बंधन के कारण रह रहे हैं, वरना तो एक सेकंड में छोड़ के चले गए, मतलब इतना कोई रिश्ता एक दूसरे की नहीं रहे। तो वहां सत्युग में सम्मान होता है एक दूसरे का, परमात्मा को जानते नहीं परंतु परमात्मा को सम्मान कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दिखाई हुई राहों पर वो चल रहे हैं, जानते नहीं है, और तो उनके जो सारे कर्म है वो परमात्मा की डायरेक्शन पर ही चल रहे होते हैं, उन्होंने इतने अच्छे संस्कार बनाए हुए होते हैं, उन्हीं संस्कारों से चल रहे हैं, परंतु वो जानते नहीं कि ये संस्कार हमारे अंदर किसने बनाए थे, हलाने की विधि सिखाई थी, किसने हमारे अंदर ये संस्कार भरे थे। परमात्मा ने इस समय उनको इतना समझाया, इतना पढ़ाया, इतना उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में संस्कार बना दिए। उन्हीं संस्कारों से वो परमात्मा के प्रति सम्मान करते रहे, उनका कहना मानते रहे, धीरे धीरे उनके सम्मान में अंतर आता गया जैसे जैसे वो पतित होते गए। इसी प्रकार से एक दूसरे के प्रति भी उनमें सम्मान की भावना थी, चाहे वो उनका कार्मिक अकाउंट था, वो चाहे कुछ भी था, परंतु था एक दूसरे के प्रति सम्मान। सम्मान ही पूजनीय बनाता है। हम अपने माता पिता को पहले पत्र में लिखा करते थे पूज्य पिताजी, पूज्य माता जी, है ना, और लिखते थे, परंतु उस समय भी मैं डाउट ज्यादा नहीं करता, इतना खराब नहीं था, फिर भी माता पिता की वो रिस्पेक्ट थोड़ा करते थे। आज से थोड़ा पहले, हमारे से पहले और ज्यादा रिस्पेक्ट करते रहे होंगे, उससे पहले और ज्यादा रिस्पेक्ट करते रहे होंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट में धीरे धीरे अंतर आए। तो सचिव में सभी एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, धीरे धीरे रिस्पेक्ट में अंतर आया। पूज्य का मतलब है सम्मान, रिस्पेक्ट। आज देवी देवताओं के ऊपर हम क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या पूजा करते हो, क्या उनके रिस्पेक्ट करते हैं, बस मूर्ति का मुंह फेर दिया, फिर आप शराब भी पी सकते हो, मांस भी खा सकते हो, दंड भी कर सकते हो, ये है रिस्पेक्ट हमारी मूर्तियों की। हम पूज्य कितना पूजा करते हैं। मुझे खुद को अपने ऊपर याद आता है कि मैं पत्थर की मूर्ति के आगे जो कुछ भी वो रख के जाते थे, मैं उठाने में एक सेकंड नहीं लगाता था, मैं उसके मुंह को भी नहीं देखता था कि मैं उठा के ले जा रहा, वो कितनी भावना के साथ भगवान के पास रख के गए हैं, और मेरी बुद्धि में क्या है कि मेरे लिए रख के गए, उसमें से एक चीज काट के उसको भी नहीं खिलाते थे, फिर टुकड़ा भी उठा के उसके उनके सामने लगा देते थे, टुकड़ा उठाया और मुंह पर लगा दिया कि भगवान को भोग लग गया, ले जाओ। मतलब कहने का यह है, हम क्या रिस्पेक्ट करते हैं उन देवी देवताओं की मूर्तियों की, तो वहां पर रियल रिस्पेक्ट, सतयुग में रियल रिस्पेक्ट की, एक दूसरे के प्रति सब सम्मान करते थे, ये है पूज्य बनना। तो परमात्मा हमें ऐसा बनाते हैं जो हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखे, एक दूसरे का सम्मान से रहना सीखे, तभी बनते हैं हम पूज्य। हम उसका सम्मान कर रहे हैं, वो हमारे लिए पूज्य है, वो हमारा सम्मान कर रहा है, हम उसके लिए पूज्य, बड़ा सीधा सा। और कोई पुजारी नहीं, वहां कोई पुजारी नहीं, और यहां आकर के जब द्वापुर के बाद हम पतित होते हैं, हम अपनी ही मूर्तियां, अपने भाई बहनों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो क्या बन जाते हैं, पुजारी। और पुजारी भी फिर भी हम द्वापुर में फिर भी अच्छे पुजारी थे, कुछ रिस्पेक्ट रखते थे, सम्मान रखते थे,
उनका तो सम्मान रखते थे, बाकी का तो थोड़ा कैसे भी हो, धीरे धीरे आज वो सम्मान भी क्या हो गया है, खत्म हो गया। उनको पानी में डुबोने के लिए पत्थर बांध देते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। क्या सम्मान है आज की इन मूर्तियों। तो बाप हमें फिर से सम्मान करना सिखाते, रिस्पेक्ट, हम सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ये हमें परमात्मा ने सिखाया, जो दोगे वही मिलेगा। ये है पूज्य बनाने की विधि या पूज्य बनाना, हमें पूज्य बनाने आए हैं बाबा। पर तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएगी। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे, बाबा हमें क्या कर रहे हैं, घर का सहज रास्ता बता रहे। क्योंकि तो और कोई बता नहीं सकता। गीत चला ओम नमः शिवाय, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहते रहते ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीते भी भाई बहने सारा दिन जो मिलेगा जो आएगा जिसको देखेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम कहते रहते। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती है। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानती। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आत्मा तो मेल है, आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है, परम आत्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गए, आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल, कोई को फीमेल कहते हैं, कोई को मेल कहते हैं और कोई को फीमेल कहते हैं। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहां ये नॉलेज रहती है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते, पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम तब से पार्ट बजाते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं, पूरा पहचानते नहीं। मोटे रूप से जानते हैं, मोटे लिंग को ही याद करते, मोटे रूप से जानते हैं, कोई ना कोई मोटा लिंग बना लेते हैं, गोल पत्थर उठाया, ये लो जी ये परमात्मा हो गया। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, उस रूप में, क्योंकि परमात्मा के बारे में दुनिया में ये है कि वो क्या है, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। इसलिए अर्जुन कहता है बस करो बस करो बस। यदि वो इतना बड़ा है तो सबको दिखाई देना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए। छोटा सा सूरज, हजारों सूरज यदि इकट्ठे हो जाए, छोटा सा सूरज हम सबको दिखाई दे रहा है तो वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, तो वो तो आसानी से दिखाई देना चाहिए ना सबको, बड़ा है तो, इससे भी बड़ा है तो, इससे भी बड़ा है तो दिखाई देना चाहिए ना, फिर दिखाई क्यों नहीं देता। दूसरी बात, कमाल की बात यह है कि प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, उनको एक ये बात बताई जाए और दूसरी बात बताई जाए कि परमात्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। गीता में लिखा गया, जो तुम्हारे भगवान की गाई हुई गीता है उसी गीता में लिखा गया, एक तरफ भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है और दूसरी तरफ लिखा गया परमात्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। अब दोनों में से एक बात ठीक होगी ना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और उसके साथ लिखा, मतलब ये आत्मा मतलब सूक्ष्म कितना है, मतलब बुद्धि से भी हम उसे नहीं जानते। सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्या है, क्या हम उसे बुद्धि से जानना चाहें तो ये भी हम उसे नहीं जानते। जब परमात्मा अति सूक्ष्म है उसे हम बुद्धि से नहीं जान सकते, फिर सत्य क्या है भाई, एक तरफ इतना बड़ा और एक तरफ इतना छोटा, तो सत्य क्या होगा, तो सत्य कौन बताएगा सिवाय परमात्मा के, नहीं बताएगा। परमात्मा ने आके बताया कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूं, इतना सूक्ष्म हूं कि सूक्ष्म दृष्टि यंत्र से भी नहीं जाना जा सकता। ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबर वार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं, तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना, वही पतित पावन, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा कहती ही पहचान नहीं है, तो वे भी समझाना पड़े, वो भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को जान सके, तब बाप को जान सके। आत्मा को ही नहीं जा पहचानते इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी, हम आत्मा क्या है, बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बहुत अच्छा है, बताते अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूं, बाप कौन है, ये नहीं, बाप कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूं और बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक है ब्रह्मा, ये नास्तिक, नास्तिक किसे कहा जाता है? जो
बाप को
हाँ जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, दोनों बातें सही है नहीं? जो बाप का कहना मानते नहीं, बाप को जानते नहीं, वो नास्तिक। क्योंकि जानते नहीं तो मानेंगे किसका? तो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते भी हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी हम संतान, वो है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे, हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बनाना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे, जो खुद पुजारी होगा वो क्या बनाएगा? पुजारी बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे। परमात्मा पूज्य क्यों है भाई? बाकी सारे पुजारी हैं, एक परमात्मा पूज्य है, क्यों? क्योंकि वो अभोक्ता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो कभी ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जो उसके प्रति किसके दिल में प्यार का अभाव आए, सम्मान का अभाव आए, ऐसा वो कोई काम नहीं करता। अज्ञानतावश समझ लेने वाले मनुष्य हल उनके प्रति क्रोध कर लेते हैं, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे बच्चे को ले लिया, लेना था तो छू दिया था, मेरे पति को मार दिया, मेरी पत्नी को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मतलब कुछ ऐसी बातें होने पर उन्हें डाउट हो जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठा है कि भगवान सुख देता है, भगवान दुख भी देता है। परंतु सच्चाई ये है कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, हर कुछ समय बाद उनको भी ये रियलाइज होता है कि हाँ मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, परमात्मा तुम मेरे को दुख देता। जब तक उन्होंने दुखी होना है वो दुखी होते रहते हैं अपने कर्मों के कारण, बाकी परमात्मा के प्रति सभी के दिल में सम्मान रहता कभी भी। तुमसे पूजा छुड़ा दी, आप समान बना रहे हैं और हमें आकर पूजा छुड़ा दी, अपने साथ ले जाते, ये छी छी दुनिया है, ये है मृत्यु लोक। भक्ति शुरू हो ही तब होती है जब रावण राज्य होता है, पूज्य से पुजारी बन जाते, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, फिर पुजारी से क्या बनते हैं, जब खुद पूज्य बनते हैं तो फिर उनके अंदर भी सबको पूज्य बनाने की ललक इच्छा जागृत होती, खुद पूज्य बनते हैं सबको फिर पूज्य बनाने लग पड़ते, पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वे बाप ही सर्व का पूज्य है, जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वे फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। आधा कल्प पूज्य बनते हैं, समझ में आ गया होगा ना। पूज्य अभी बनते हैं और वहां ऐसे कर्म करना सीख जाते हैं जो सबके दिल में उनके प्रति सम्मान हो। ब्रह्मा निपात, ब्रह्मा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वो निराकार है, वो नॉलेज फुल ही आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं, अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों को की दिल में जगता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा, कल्प बाद भी बाबा को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वे फिर कल्प बाद जाने, वो फिर क्या करेंगे, कल्प बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे, ये तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी, याद रहने से खुशी भी रहती है, स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे। आग जरूर लगेगी, क्या लगेगी, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे, जो लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मासिक विनाश तो होना ही है, तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब हाथ में उठाना पड़ेगा, मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब लगा दिए, तो बॉम्ब लगा दिए, भावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब हैं, अभी तो हजारों बॉम्ब हैं। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापस ले जाने, सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ। इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। हम बच्चे जानते, तुम बच्चे जानते हो, पावन दुनियाएं हैं दो, पावन दुनियाएं कितनी हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति, सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाती है, ये दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं, ये भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, अब कौन आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना, हाँ जी एक पूछना है, हाँ जी हाँ, अकाली मृत्यु कहीं भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, परंतु जो जानते नहीं तो कहते हैं, इसलिए बाबा वो यहाँ उस विषय पर चर्चा करने का टाइम से बचने के लिए बाबा भी कह देते विनाश जरूर होना है, ये 100% सर्टेन निश्चित। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बना, मुझे याद करो तो विकार विनाश हो जाएंगे, परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते, बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भाव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो, सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, कैसे राज्य करते हो, फिर तुम ही यही अनुभव पाएंगे, उस समय तुम प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो, आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बुरा हुआ, ये छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं, यहाँ तो शरीर ना छूटे, इसके लिए कितनी डॉक्टर की दवाइयां आदि की मेहनत करते हैं, तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है, शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये मेहनत है, परंतु 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 क्या, पहले तो आत्मा को जानना पड़े, पहले तो क्या करना पड़े, आत्मा को जानना पड़े, मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा, याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं, वहाँ हमारा शांति धाम है, शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते, जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे, बाप से वर्षा वही लेंगे जिन्होंने कल्प पहले लिया है। मुख्य बात है, मुख्य है याद की यात्रा, मेन बात है बाबा की श्री मत पर चलना, अपने आप को सुधारते जाना, आगे बढ़ते रहना। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझो, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देगी। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वे बच्चों की बुद्धि में चपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं, अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो, जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है, अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहां तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूं ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए, ज्ञान का किसी को भी पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जाती भक्ति की है उनको जाती फल मिलेगा, वही अच्छी रीति पढ़ते हैं। उच्च पद पाने के लिए ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बुद्धियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ऊंच से ऊंच है भगवान से, शिव परमात्माएं नमा कहा जाता है, वे कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो ये वे फिर संस्कार ले जाते, ये फिर क्या करते हैं संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं दे, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों में तकलीफ देती है, इसलिए अभी आया तुम को शायद रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो, भल याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकार में विनाश होंगे। बल की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम अच्छी रीति जानते हैं, तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है, भागीरथ भाग्यशाली रथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं, तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया, मनुष्य ने क्या किया है, फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु को ब्रह्मा, ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु को ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सुनते हम सारे थे, परंतु कैसे बनते हैं ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अब परमात्मा ने आके समझाया बच्चों में, अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के फिर विष्णुपुरी के बनेंगे, हम ब्रह्मापुरी के हैं फिर विष्णुपुरी के बनेंगे, विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते, ये भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ मां एकम याद करो तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे, तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है, ये एक अंतिम जन्म, ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, फिर भी वे जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता, धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी, इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत, इसमें क्या है, मेहनत है, उनकी ही रात में याद रहे। मीठी मीठी सुखी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोद मोदने रूहानी बच्चों का, बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर 1। साक्षी हो अपने को देखना, साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते चलते फिरते चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी संग नहीं होना, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना, स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टावान हर कर्म करते बंधन मुक्त सिद्धि के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप हो। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। सदा क्या होगा? सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा पर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइफ है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइफ है। अगर इशारे आत्मिक शक्ति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करते हैं, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ जमाता है, इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। तो ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है, इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मात्र सर्वशक्तिवान हूं, समर्थ आत्मा तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे, मिटाने वाले बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम